ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल सभी तरह के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का हिमायती है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कथन। सरकार एसिड हमले के पीड़ितों का निःशुल्क करेगी इलाज। शिक्षण अस्पताल वीर पाटन और कीर्तिपुर अस्पताल में है इलाज की व्यवस्था। देश में आज कोरोना के 438 नए मामले आए सामने, संक्रमित दो की हुई मौत। और अमेरिका के केंटकी राज्य में भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि पर्वतीय और द्वीपीय देशों के हित के लिए अभी भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने बाकी हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कानून समाज और एशियाई अंतर्राष्ट्रीय कानून समाज द्वारा आज ललितपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर को संबोधित करने की दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक है। राष्ट्रपति भंडारी ने यह भी कहा कि नेपाल सभी तरह के युद्धों के विपक्ष में है और राष्ट्र राष्ट्र के बीच हर तरह के विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का हिमायती है। आगे उन्होंने कहा कि विश्व में आणविक हथियार की होड़बाजी को रोकने के पक्ष में नेपाल दृढ़ है। सरकार ने कहा है कि एसिड हमले के पीड़ितों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी ने कहा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल और कीर्तिपुर अस्पताल में एसिड हमले के पीड़ितों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। डॉक्टर अधिकारी ने यह भी बताया कि आकस्मिक इलाज के लिए देश के किसी भी स्वास्थ्य संस्था से निःशुल्क सेवा मुहैया कराने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने एसिड हमले के पीड़ितों के इलाज संबंधी कार्यविधि 2078 को पारित किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि 5 दलीय गठबंधन को संघीय और प्रादेशिक निर्वाचन के बाद भी निरंतरता दी जाएगी। आज डोटी की सलगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने यह बात कही। आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसे आगामी दिनों में भी निरंतरता देने पर 5 दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सहमति बनी है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता जननाथ खनाल ने कहा कि मानवाधिकार की पूर्ण प्रत्याभूति सिर्फ समाजवादी समाज में ही होती है। काभ्रे पलांचोक के बनेपा में नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादी के जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता खनाल ने यह बात कही। आगे उन्होंने कहा कि देश में समाजवाद की स्थापना के बाद ही नेपाली जनता सुख शांति और समृद्धि हासिल कर सकती है। आज कोरोना के 438 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई और 277 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसी तरह सक्रिय संक्रमितों में से 4218 होम आइसोलेशन में, 151 होम आइसोलेशन में, 33 आईसीयू में और 4 मरीज वेंटिलेटर पर अपना इलाज करा रहे हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने अपने नियमित बुलेटिन के जरिए दी। कंचनपुर के शुक्ला फाट राष्ट्रीय निकुंज में पाटे बाघ यानी बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर दुगनी हो गई है। कुल 36 बाघों में से 16 स्त्री और 12 पुरुष के तौर पर पहचाने गए हैं, जबकि 8 बाघों को फिलहाल लिंग स्पष्ट नहीं हो सका है। ये बात निकुंज कार्यालय के निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकारी मनोज अय्यर ने बताई। बता दें कि सन 2009 में इस निकुंज में बंगाल टाइगर की संख्या महज 8 ही थी। राष्ट्रीय भूमि आयोग ने परसा की अधिकांश पालिकाओं में जमीन व्यवस्थापन का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में वीरगंज महानगर पालिका, परसा गढ़ी, बहुतरमाई नगर पालिका और ठोरी गांव पालिका में इस काम की शुरुआत की गई है। दूसरे चरण में जिले की पोखरिया नगर पालिका सहित पकहा मैनपुर, पटेरबा सुगौली, जगन्नाथपुर विन्दवासिनी और सखुआ प्रसौनी गांव पालिका में जमीन व्यवस्थापन का काम शुरू किया जायेगा। ये जानकारी आयोग ने दी। परसा के वीरगंज में 1000 व्यक्ति क्षमता वाले होल्डिंग सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। खबर के मुताबिक पूर्वाधार के सभी काम हो चुके हैं, जबकि महज 100 बेडों पर ऑक्सीजन फिट करने का काम बाकी है। बता दें कि भारत से वीरगंज नाके से होकर आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन में रखने के लिए यहां करीब 28 करोड़ की लागत में भवन बनाया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G
सारी नै छिटो चल्छ।
भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्युठान की स्वर्गद्वारी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के भ्यागुते में हुई जीप दुर्घटना में रूपंदेही की मायादेवी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 निवासी गुड़िया ठाकुर की मौत हो गई है, जबकि अन्य 14 यात्री घायल हुए हैं। घायलों में से 9 की अवस्था गंभीर बताई गई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय प्युठान के प्रमुख DSP सत्यनारायण थापा ने दी। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय हेटौड़ा ने न्यून स्तरीय खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाले 8 उद्योगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये जानकारी जिला अदालत और जिला प्रशासन कार्यालय ने दी। बता दें कि विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जांच करने पर मापदंड अनुसार न पाए जाने पर इन उद्योगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री हीरा चंद्र केसी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। आज काठमांडू में आयोजित एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री केसी ने स्वास्थ्यकर्मियों की समस्याओं का समाधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की अनुभूति दिलाने के हिसाब से मंत्रालय काम करेगा। सरकार द्वारा लाई गई एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति का अनुसरण करते हुए तुलसीपुर की गुरुजजुर मावी ने 4 शैया वाले स्वास्थ्य कक्ष की स्थापना की है। बीमार विद्यार्थियों के इलाज के लिए विद्यालय ने अपने खर्चे पर विद्यालय में 4 शैया वाले कक्ष की स्थापना की है और साथ ही प्राथमिक इलाज की सामग्रियां और दवाइयां खरीदी हैं। ये जानकारी विद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक प्रमोद न्यफाने ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देश का पश्चिमी हिस्सा जहां भीषण गर्मी और सूखे से बेहाल है, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो रही है। 27 जुलाई से हो रही बारिश के चलते केंटकी राज्य में बाढ़ आ गई है। यहां कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। केंटकी गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बारिश के चलते इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई है। यहां 25,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है। गंभीर हालात को देखते हुए इमरजेंसी लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। गवर्नर एंडी बेशियर ने बताया कि बाढ़ से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में नेशनल गार्ड की टीम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रही है। करीब 50 हेलीकॉप्टर 100 बोट लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही मची है। बता दें कि UAE के पूर्वी हिस्सों में बीते बुधवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी रही। भारी बारिश के चलते घरों में पानी भर गया, वहीं सड़कें लबालब होने से गाड़ियां बह गईं। यूएई की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से शारजाह, रास अल खैमाह और फुजैराह जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से कई घर पूरी तरह से पानी में डूब गए, कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए। शहरों में जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। इलाकों में पानी भरा होने से वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ से निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। शारजाह पुलिस ने स्थानीय लोगों से देश के पूर्वी क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। नेशनल सेंटर फॉर मेटीरियोलॉजी NCM ने कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। NCM का कहना है कि UAE में 27 साल बाद इस तरह की भीषण बारिश हुई है। UAE के कुछ इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। बचाव कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल सभी तरह के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का हिमायती है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कथन। सरकार एसिड हमले के पीड़ितों का निशुल्क करेगी इलाज। शिक्षण अस्पताल वीर पाटन और कीर्तिपुर अस्पताल में है इलाज की व्यवस्था। देश में आज कोरोना के 438 नए मामले आए सामने, संक्रमित दो की हुई मौत। और अमेरिका के केंटकी राज्य में भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।